بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين
اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے الف لام را یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا ابھیپرائے سپشٹ روپ سے بیان کرتی ہیں हमने इसे उतारा है कुरान बनाकर अरबी भाषा में ताकि तुम अरब वाले इसको अच्छी तरह समझ सको। ऐ नबी, हम इस कुरान को तुम्हारी ओर प्रकाशना करके उत्तम शैली में घटनाएं और तथ्य तुमसे बयान करते हैं, वरना इससे पहले तो इन चीजों से तुम बिल्कुल ही बेखबर थे। ये उस समय की बात है जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं और वे मुझे सजदा कर रहे हैं।
قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم
جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا نہیں تو وہ تجھے تکلیف پہنچانے پر اتارو ہو جائیں گے واستوکتا یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے और ऐसा ही होगा जैसा तूने ख्वाब में देखा है कि तेरा पालनहार तुझे अपने काम के लिए चुनेगा और तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा और तेरे ऊपर और याकूब के लोगों पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहिम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है।
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين
वास्तविकता ये है कि यूसुफ और उसके भाइयों की कथा में इन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये किस्सा इस तरह शुरू होता है कि उसके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और इसका भाई दोनों हमारे बाप को हम सबसे ज्यादा प्रिय हैं, हालांकि हम एक पूरा जत्था हैं। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। चलो यूसुफ को मार डालो या उसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे बाप का ध्यान केवल तुम्हारी ओर ही हो जाए। ये काम कर लेने के बाद फिर नेक बन रहना। इस पर उनमें से एक बोला, यूसुफ का कत्ल न करो, अगर कुछ करना है तो उसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफिला उसे निकाल ले जाएगा।
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
इस प्रस्ताव पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान, क्या बात है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा नहीं करते, हालांकि हम उसके सच्चे हितैषी हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ चर चुग लेगा और खेलकूद से भी दिल बहलाएगा। हम उसकी रक्षा को मौजूद हैं। बाप ने कहा, तुम्हारा उसे ले जाना मेरे लिए दुख की बात होती है और मुझे डर है कि कहीं उसे भेड़िया ना फाड़ खाए जबकि तुम उससे गाफिल हो। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारे होते उसे भेड़िये ने खा लिया जबकि हम एक जत्था हैं, तब तो हम बड़े ही निकम्मे होंगे।
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين।
इस तरह जिद करके जब वे उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि उसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें, तो हमने यूसुफ की ओर प्रकाशना की कि एक समय आएगा जब तू इन लोगों को इनकी ये हरकत जताएगा। ये अपने कर्म के परिणामों से बेखबर हैं। शाम को वे रोते पीटते अपने बाप के पास आए और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में भेड़िया आकर उसे खा गया। आप हमारी बात का विश्वास न करेंगे चाहे हम सच्चे ही हों।
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين।
और वे यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून लगा कर ले आए थे। ये सुनकर उनके बाप ने कहा, बल्कि तुम्हारे जी ने तुम्हारे लिए एक बड़े काम को आसान बना दिया। अच्छा, सब्र करूंगा और खूब अच्छी तरह सब्र करूंगा। जो बात तुम बना रहे हो उस पर अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है। उधर एक काफिला आया और उसने अपने पानी भरने वाले सक्के को पानी लाने के लिए भेजा। पानी भरने वाले ने जो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ को देखकर पुकार उठा, मुबारक हो, यहां तो एक लड़का है। उन लोगों ने उसको सौदागरी का माल समझकर छिपा लिया, हालांकि जो कुछ वे कर रहे थे अल्लाह को उसका पूरा ज्ञान था। आखिरकार उन्होंने थोड़े से मूल्य पर कुछ दिरहमों के बदले उसे बेच डाला और उसकी कीमत के मामले में वे कुछ ज्यादा की उम्मीद न रखते थे।
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون।
मिस्र के जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा, इसको अच्छी तरह रखना, असंभव नहीं कि ये हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हमने यूसुफ के लिए उस भूभाग में कदम जमाने की राह निकाली और उसे मामले की समझ की शिक्षा देने का प्रबंध किया। अल्लाह अपना काम करके रहता है मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे निर्णय शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। इस तरह हम नेक लोगों को बदला देते हैं। जिस औरत के घर में वो था वो उस पर डोरे डालने लगी और एक दिन दरवाजे को बंद करके बोली, आजा। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छा दर्जा प्रदान किया और मैं ये काम करूं? ऐसे जालिम कभी सफल नहीं हुआ करते।
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.
वो उसकी ओर बढ़ी और यूसुफ भी उसकी ओर बढ़ता अगर अपने रब का प्रमाण न देख लेता। ऐसा हुआ ताकि हम उससे बुराई और बेहयाई को दूर करते। वास्तव में वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। आखिरकार यूसुफ और वो आगे पीछे दरवाजों की ओर भागे और उसने पीछे से यूसुफ की कमीज खींच कर फाड़ दी। दरवाजे पर दोनों ने उसके शौहर को मौजूद पाया। उसे देखते ही औरत कहने लगी, क्या सजा है उस व्यक्ति की जो तेरी घरवाली पर नीयत खराब करे? इसके सिवा और क्या सजा हो सकती है कि वो कैद किया जाए या उसे सख्त यातना दी जाए? यूसुफ ने कहा, यही मुझे फांसने की कोशिश कर रही थी। उस औरत के अपने घराने में से एक व्यक्ति ने अनुमान की गवाही पेश की कि अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी हो तो औरत सच्ची है और ये झूठा।
وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
और अगर उसकी कमीज पीछे से फटी हो तो औरत झूठी है और ये सच्चा। जब पति ने देखा कि यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा, ये तुम औरतों की चालाकियां हैं, वास्तव में बड़े गजब की होती हैं तुम्हारी चालें। यूसुफ इस मामले को जाने दे और ए औरत, तू अपने कसूर की माफी मांग, तू ही वास्तव में खताकार थी। शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगीं कि प्रमुख अधिकारी अजीज की पत्नी अपने नवयुवक गुलाम के पीछे पड़ी हुई है, मोहब्बत ने उसको बेकाबू कर रखा है, हमारी दृष्टि में तो वो खुली गलती कर रही है।
وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
उसने जो उनकी ये मक्कारी की बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकियादार मजलिस सजाई और सत्कार में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ठीक उस समय जब वे फल काट काट कर खा रही थीं, उसने यूसुफ को इशारा किया कि उनके सामने निकला। जब उन औरतों की निगाह उस पर पड़ी तो वे दंग रह गईं और अपने हाथ काट बैठीं और सहसा पुकार उठीं, अल्लाह की पनाह, ये व्यक्ति इंसान नहीं है ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। प्रमुख अधिकारी की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो व्यक्ति जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थीं। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की थी, मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना न मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत रुस्वा और अपमानित होगा।
أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه
यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, कैद मुझे पसंद है इसकी अपेक्षा कि मैं वो काम करूं जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे न टाला तो मैं इनके जाल में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल होकर रहूंगा। उसके रब ने उसकी दुआ स्वीकार की और उन औरतों की चालें उससे दूर कर दी। बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। फिर उन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए उसे कैद कर दें, हालांकि वे उसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे आचार व्यवहार की खुली निशानियां देख चुके थे। जेल में दो गुलाम और भी उसके साथ दाखिल हुए। एक दिन उनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटियां रखी हैं और पक्षी उनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी ताबीर यानी स्वप्न फल बता दीजिए, हम देखते हैं कि आप एक नेक आदमी हैं।
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار
يوسف نے کہا यहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है उसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। ये उन ज्ञान की चीजों में से है जो मेरे रब ने मुझे प्रदान की हैं। वास्तविकता ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने पूर्वजों इब्राहिम इसहाक और याकूब का तरीका अपनाया है। हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराएं। वास्तव में ये अल्लाह का उदार अनुग्रह है हम पर और सारे इंसानों पर कि उसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया। मगर ज्यादातर लोग कृतज्ञता नहीं दिखाते। ऐ कारागार के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से विभिन्न रब अच्छे हैं या वो एक अल्लाह जिसे सब पर प्रभुत्व प्राप्त है।
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
उसे छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वे इसके सिवा कुछ नहीं हैं कि बस कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। शासन की सत्ता अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका आदेश है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी न करो। यही ठेठ सीधी जीवन प्रणाली है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। ऐ कारागार के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने रब यानी मिस्र के सम्राट को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और पक्षी उसका सिर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जो तुम पूछ रहे थे। फिर उनमें से जिसके संबंध में ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा कि अपने रब यानी मिस्र के सम्राट से मेरी चर्चा करना, मगर शैतान ने उसे गफलत में ऐसा डाला कि वो अपने रब यानी मिस्र के बादशाह से उसकी चर्चा करना भूल गया और यूसुफ कई वर्ष जेल में पड़ा रहा।
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.
एक दिन बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि सात मोटी गायें हैं जिनको सात दुबली गायें खा रही हैं और अनाज की सात बालें हरी हैं और दूसरी सात सूखी। ऐ दरबारियो, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का अर्थ समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो उलझन भरे ख्वाब की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का अर्थ नहीं जानते। उन दो कैदियों में से जो व्यक्ति बच गया था और उसे एक लंबे समय के बाद अब बात याद आई, उसने कहा, मैं आप सब लोगों को इसकी तफसील बताता हूँ। मुझे तनिक जेल में यूसुफ के पास भेज दीजिए।
يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
उसने जाकर कहा, यूसुफ, ऐ सच्चाई के पुतले, मुझे इस ख्वाब का अर्थ बता कि सात मोटी गायें हैं जिनको सात दुबली गायें खा रही हैं और सात बाले हरी हैं और सात सूखी। शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वे जान लें। यूसुफ ने कहा, सात साल तक लगातार तुम खेती बाड़ी करते रहोगे। इस बीच जो फसल तुम काटो उनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकालो और बाकी को उसकी बालों ही में रहने दो। फिर सात साल बहुत कठिन आएंगे। उस अवधि में वो सब गल्ला यानी अनाज खा लिया जाएगा जो कुछ तुम उस समय के लिए इकट्ठा करोगे। अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो तुमने सुरक्षित कर रखा हो। इसके बाद फिर एक वर्ष ऐसा आएगा जिसमें रहमत की बारिश से लोगों की फरियाद सुन ली जाएगी और वे रस निचोड़ेंगे।
وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
बादशाह ने कहा उसे मेरे पास ले आओ, मगर जब बादशाह का भेजा हुआ दूत यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, मेरा रब तो उनकी मक्कारी से परिचित ही है। इस पर बादशाह ने उन औरतों से पूछा तुम्हारा क्या अनुभव है उस समय का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी। सबने एक जबान होकर कहा अल्लाह की पनाह, हमने तो उसमें बुराई की झलक तक न पाई। प्रमुख अधिकारी की बीवी बोल उठी अब सत्य खुल चुका है, वो मैं ही थी जिसने उसको फुसलाने की कोशिश की थी, बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। यूसुफ ने कहा इससे मेरा उद्देश्य ये था कि प्रमुख अधिकारी ये जान ले कि मैंने छिपकर उसके साथ विश्वासघात नहीं किया था, और ये कि जो विश्वासघात करते हैं उनकी चालों को अल्लाह सफलता की राह पर नहीं लगाता।
وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
मैं कुछ अपने जी यानी नफ्स को बरी नहीं ठहरा रहा हूँ, जी तो बुराई पर उकसाता ही है। ये और बात है कि किसी पर मेरे रब की दयालुता हो, बेशक मेरा रब बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। बादशाह ने कहा उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए खास कर लूं। जब यूसुफ ने उससे बातचीत की तो उसने कहा अब आप हमारे यहाँ प्रतिष्ठित और ऊंचा दर्जा रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा देश के खजाने मुझे सौंप दीजिए, मैं रक्षा करने वाला भी हूँ और ज्ञान भी प्राप्त है। इस तरह हमने उस भूभाग में यूसुफ के लिए सत्ताधिकार की राह प्रशस्त की। उसे अधिकार प्राप्त था कि उसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी दयालुता जिसे चाहते हैं प्रदान करते हैं। नेक लोगों का बदला हमारे यहाँ मारा नहीं जाता, और आखिरत का बदला उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा से डरते हुए काम करते रहे।
ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
يوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے یہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے اپریچت تھے۔ फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो तो चलते समय उनसे कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भरकर देता हूँ और कैसा अच्छा अतिथि सत्कार करने वाला हूँ। अगर तुम उसे न लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी न फटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि अब्बा जान उसे भेजने पर राजी हो जाएं और हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को संकेत किया कि इन लोगों ने गल्ले के बदले जो माल दिया है वो चुपके से इनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वे अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे या इस दानशीलता पर आभारी होंगे और आश्चर्य नहीं कि फिर पलटें।
فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل।
जब वे अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, अतः आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएं और उसकी रक्षा के हम जिम्मेदार हैं। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं? अल्लाह ही सबसे अच्छा रक्षक है और वो सबसे बढ़कर दयावान है। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वे पुकार उठे, अब्बा जान और हमें क्या चाहिए? देखिए, ये हमारा माल भी हमें वापस दे दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने घर वालों के लिए रसद लेकर आएंगे, अपने भाई की रक्षा भी करेंगे और एक ऊंट का बोझ और ज्यादा भी लाएंगे। इतने गल्ले का इजाफा आसानी के साथ हो जाएगा। उनके बाप ने कहा, मैं इसको हरगिज तुम्हारे साथ न भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझे पक्का वचन न दो कि उसे मेरे पास जरूर वापस लेकर आओगे। ये और बात है कि तुम घेर ही लिए जाओ। जब उन्होंने उसको अपने अपने वचन दे दिए तो उसने कहा, देखो हम ये जो कुछ कह रहे हैं उसका अल्लाह निरीक्षक है।
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون।
फिर उसने कहा, मेरे बच्चों, मिस्र की राजधानी में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि विभिन्न दरवाजों से जाना, मगर मैं अल्लाह की इच्छा के विरुद्ध तुमको नहीं बचा सकता। आदेश उसके सिवा किसी का भी नहीं चलता, उसी पर मैंने भरोसा किया और जिसको भी भरोसा करना हो उसी पर करे। और हुआ भी यही कि जब वे अपने बाप के आदेश के अनुसार शहर में विभिन्न दरवाजों से दाखिल हुए तो उसका ये सावधानी का उपाय अल्लाह की इच्छा के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सका, हाँ, बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई शिक्षा से ज्ञानवान था, मगर ज्यादातर लोग मामले की वास्तविकता को जानते नहीं हैं।
قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين
ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया और उसे बता दिया कि मैं तेरा वही भाई हूँ जो खोया गया था। अब तू उन बातों का रंज ना कर जो ये लोग करते रहे हैं। जब यूसुफ उन भाइयों का सामान लदवाने लगा तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ऐ काफिले वालो, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज खो गई? सरकारी कर्मचारियों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और उनके जमादार ने कहा, जो व्यक्ति लाकर देगा उसके लिए एक ऊंट का बोझ इनाम है, इसका मैं जिम्मा लेता हूँ। उन भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस देश में बिगाड़ पैदा करने नहीं आए हैं और हम चोरियां करने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा है?
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون
उन्होंने कहा, उसकी सजा, जिसके सामान में से चीज निकले वो खुद ही अपनी सजा में रख लिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे जालिमों को सजा देने की यही रीति है। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले इनकी खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की खुर्जी से खोई हुई चीज निकाल ली। इस तरह हमने यूसुफ की सहायता अपने उपाय से की। उसका ये काम ना था कि बादशाह के दीन अर्थात मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता। ये और बात है कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। हम जिसके दर्जे चाहते हैं ऊंचे कर देते हैं और एक ज्ञानवान ऐसा है जो हर ज्ञान वाले से उच्च है। उन भाइयों ने कहा, ये चोरी करे तो कुछ आश्चर्य की बात भी नहीं, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। यूसुफ उनकी ये बात सुनकर पी गया, सत्य का उद्घाटन उन पर न किया, बस होठों ही में इतना कहकर रह गया कि बड़े ही बुरे हो तुम लोग, मेरे मुंह पर ही जो इल्जाम तुम लगा रहे हो उसकी वास्तविकता अल्लाह खूब जानता है। उन्होंने कहा, ए प्रमुख सत्ताधारी सरदार, इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही पुण्यात्मा व्यक्ति पाते हैं। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, दूसरे किसी व्यक्ति को हम कैसे रख सकते हैं? जिसके पास हमने माल पाया है उसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे।
فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم।
जब वे यूसुफ से निराश हो गए तो एक कोने में जाकर आपस में मशविरा करने लगे। उनमें जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे अब्बा तुमसे अल्लाह के नाम पर पक्का वचन ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहाँ से हरगिज ना जाऊंगा जब तक कि मेरे अब्बा जान की मुझे अनुज्ञा ना मिले, या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला कर दे कि वो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने अब्बाजान से कहो कि अब्बाजान, आपके बेटे ने चोरी की है, हमने उसे चोरी करते हुए देखा, जो कुछ हमें मालूम हुआ है बस वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब यानी परोक्ष तो हमारी दृष्टि में था नहीं। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, उस काफिले से पूछ लीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। बाप ने ये वृत्तांत सुनकर कहा, वास्तव में तुम्हारे जी यानी नफ्स ने तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात को आसान बना दिया, अच्छा इस पर भी सब्र करूंगा और खूबी के साथ करूंगा, कुछ मुश्किल नहीं कि अल्लाह उन सब को मुझसे ला मिलाए, वो सब कुछ जानता है और उसके सारे काम तत्वदर्शिता पर आधारित हैं।
وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون।
फिर वो उनकी ओर से मुंह फेर कर बैठ गया और कहने लगा कि हाय यूसुफ। वो दिल ही दिल में गम से घुटा जा रहा था और उसकी आंखें सफेद पड़ गई थीं। बेटों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप तो बस यूसुफ ही को याद किए जाते हैं, नौबत ये आ गई है कि उसके गम में अपने आप को घुला देंगे या अपनी जान दे देंगे। उसने कहा, मैं अपनी परेशानी और अपने गम की शिकायत अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, और अल्लाह से जैसा मैं परिचित हूँ तुम नहीं हो। मेरे बच्चों, जाकर यूसुफ और उसके भाई की कुछ टोह लगाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, उसकी रहमत से तो बस अधर्मी ही मायूस हुआ करते हैं।
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے ستاداری سردار हम और हमारे घर वाले बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं और हम कुछ मामूली सी पूंजी लेकर आए हैं। आप हमें भरपूर गल्ला प्रदान करें और हमको दान दें। अल्लाह दान देने वालों को बदला देता है। ये सुनकर यूसुफ से न रहा गया। उसने कहा, तुम्हें कुछ ये भी मालूम है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम नादान थे। वे चौंक कर बोले, अरे क्या तुम यूसुफ हो? उसने कहा, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हमारे साथ उपकार किया। सत्य ये है कि अगर कोई डर कर रहे और सब्र से काम ले तो अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक लोगों का बदला मारा नहीं जाता।
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم
انہوں نے کہا अल्लाह की कसम, तुमको अल्लाह ने हमारे मुकाबले में श्रेष्ठता प्रदान की और वास्तव में हम खताकार यानी अपराधी थे। उसने जवाब दिया, आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बढ़कर दयावान है। जाओ मेरी ये कमीज ले जाओ और मेरे अब्बाजान के मुंह पर डाल दो, उनकी आंख की रोशनी पलट आएगी, और अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप ने कहा, मैं यूसुफ की महक महसूस कर रहा हूँ, तुम लोग कहीं ये न कहने लगो कि मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूँ। घर के लोग बोले, अल्लाह की कसम, आप अभी तक अपनी उसी पुरानी भ्रांति में पड़े हुए हैं।
ارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين
جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور اچانک اس کی آنکھ کی روشنی پلٹ آئی تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی اور سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے सब बोल उठे, अब्बा जान आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, वास्तव में हम खताकार थे। उसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दरखास्त करूंगा, वो बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने माँ बाप को अपने साथ बिठा लिया और अपने सब कुटुम्ब वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे।
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين
शहर में दाखिल होने के बाद उसने अपने माँ बाप को उठाकर अपने पास सिंहासन पर बिठाया और सब उसके आगे यकायक सजदे में झुक गए। यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये अर्थ है मेरे उस ख्वाब का जो मैंने पहले देखा था। मेरे रब ने उसे सत्य बना दिया। उसका एहसान है कि उसने मुझे जेल से निकाला और आप लोगों को उजाड़ स्थान यानी सहरा से लाकर मुझसे मिलाया। हालांकि शैतान मेरे और मेरे भाइयों के बीच फसाद डाल चुका था। सच ये है कि मेरा रब सूक्ष्म उपायों से अपनी इच्छा पूरी करता है। बेशक वो सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। ऐ मेरे रब, तूने मुझे राज्य प्रदान किया और मुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाया। जमीन और आसमान के बनाने वाले तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा संरक्षक है। मेरा अंत इस्लाम पर कर और अंतिम परिणाम के तौर पर मुझे अच्छों के साथ मिला। ऐ नबी अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किस्सा गैब यानी परोक्ष के समाचारों में से है जिसकी प्रकाशना हम तुम पर कर रहे हैं, वरना तुम उस समय मौजूद न थे जब यूसुफ के भाइयों ने आपस में एकमत होकर साजिश की थी। मगर तुम चाहे कितना ही चाहो, इनमें से ज्यादातर लोग मानने वाले नहीं हैं। हालांकि तुम इस सेवा कार्य पर इनसे कोई बदला भी नहीं मांगते। ये तो एक उपदेश है जो दुनिया वालों के लिए आम है।
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
जमीन और आसमानों में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुजरते रहते हैं और तनिक ध्यान नहीं देते। इनमें से ज्यादातर अल्लाह को मानते हैं मगर इस तरह कि उनके बीच दूसरों को साझी ठहराते हैं। क्या ये निश्चिंत हैं कि अल्लाह के अजाब की कोई बला उन्हें दबोच न लेगी या बेखबरी में कयामत की घड़ी अचानक इन पर ना आ जाएगी। तुम इनसे साफ कह दो कि मेरा रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह की ओर बुलाता हूँ। मैं खुद भी पूरे प्रकाश में अपना रास्ता देख रहा हूँ और मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक है और साझी ठहराने वालों से मेरा कोई नाता नहीं।
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
أي نبي तुमसे पहले हमने जो पैगंबर भेजे थे वे सब भी इंसान ही थे और इन्हीं बस्तियों के रहने वालों में से थे और उन्हीं की ओर हम प्रकाशना भेजते रहे हैं। फिर क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि उन कौमों का परिणाम इन्हें दिखाई न दिया जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं। यकीनन आखिरत का घर उन लोगों के लिए और ज्यादा अच्छा है जिन्होंने पैगंबरों की बात मानकर परहेजगारी की नीति अपनाई। क्या अब भी तुम लोग न समझोगे? पहले पैगंबरों के साथ भी यही होता रहा है कि वे मुद्दतों समझाते रहे और लोगों ने माना नहीं। यहां तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि उनसे झूठ बोला गया था तो अचानक हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई। फिर जब ऐसा अवसर आ जाता है तो हमारा नियम यह है कि जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं और अपराधियों पर से हमारा अजाब टाला ही नहीं जा सकता। पहले के लोगों के इन किस्सों में बुद्धि और चेतना वालों के लिए शिक्षाप्रद सामग्री है। ये जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये बनावटी बातें नहीं हैं, बल्कि जो किताबें इससे पहले आई हुई हैं उन्हीं की पुष्टि है और हर चीज का विस्तृत वर्णन और ईमान लाने वालों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता।